इसराइल की समुद्री डकैती, आतंकवाद और मदलीन पर बंधक बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन। 9 जून 2025 को इसराइली नौसेना ने बेशर्मी से मदलीन पर चढ़ाई की, जो कि यूनाइटेड किंगडम के झंडे तले फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन द्वारा संचालित एक जहाज था, जो गाजा से 160 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में था। जहाज पर स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, तुर्की, स्पेन और नीदरलैंड के 12 कार्यकर्ता सवार थे, जिनमें जलवायु आइकन ग्रेटा थनबर्ग और फ्रांसीसी सांसद रीमा हसन शामिल थी, जो गाजा में प्रतीकात्मक सहायता पहुंचाने और इसराइल के अवैध नाकाबंदी को चुनौती देने के लिए एक मानवीय मिशन पर थे। इसराइल की जबरदस्ती हस्तक्षेप, जिसमें संचार में व्यवधान और एक चिड़चिड़ाने वाले पदार्थ का उपयोग शामिल था, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन अंट्रोस के तहत स्पष्ट रूप से समुद्री डकैती, ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस जीटीडी मानदंडों के तहत आतंकवाद और उन देशों के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई है जिनके नागरिकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इन व्यक्तियों की हिरासत, जिसमें एक वर्तमान यूरोपीय संसद सदस्य शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय बंधक बनाना है, जबकि यूनाइटेड किंगडम का अपने झंडे वाले जहाज की रक्षा करने में विफलता उसकी कानूनी जिम्मेदारियों का शर्मनाक परित्याग है। यह निबंध इसराइल की कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन मानते हुए उनकी निंदा करता है और जवाबदेही की मांग करता है। अनक्लोज के तहत इसराइल की कार्रवाइयां समुद्री डकैती के रूप में। अनक्लोज के अनुच्छेद 101 के अनुसार समुद्री डकैती को किसी भी अवैध हिंसा या हिरासत के कार्य या कोई भी लूटपाट का कार्य, जो निजी उद्देश्यों के लिए निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा खुले समुद्र में किसी अन्य जहाज के खिलाफ किया जाता है, के रूप में परिभाषित किया गया है। इसराइल का मदलीन पर चढ़ाई इस परिभाषा के साथ खतरनाक सटीकता से मेल खाता है। मदलीन यूनाइटेड किंगडम के झंडे तले एक नागरिक जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल में था, किसी भी राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर, जब इजरायली नौसेना बलों ने सशस्त्र हस्तक्षेप किया। यह हिंसक कार्य, जिसमें एक चिड़चिड़ाने वाले पदार्थ का उपयोग और चालक दल की हिरासत शामिल थी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत अवैध था, क्योंकि मदलीन कोई खतरा नहीं था, वह एक शांतिपूर्ण मानवीय मिशन में लगा हुआ था। इसराइल का गाजा नाकाबंदी लागू करने का दावा इसे अनक्लोज से मुक्त नहीं करता। नाकाबंदी स्वयं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत व्यापक रूप से अवैध मानी जाती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें गाजा की नागरिक आबादी पर इसके प्रभाव की निंदा करती हैं। भले ही इसराइल सुरक्षा तर्क का दावा करता हो, अनक्लोज का अनुच्छेद 101 सरकारी अभिनेताओं को बिना सहमति या स्पष्ट कानूनी आधार, जैसे कि समुद्री डकैती या मानव तस्करी के सबूत, अंतर्राष्ट्रीय जल में विदेशी झंडे वाले जहाजों पर चढ़ने की अनुमति नहीं देता, जो मदलीन पर लागू नहीं था। शिशु फॉर्मूला और चावल ले जा रहे जहाज को रोकने के लिए बल का उपयोग, संचार में व्यवधान और नागरिकों को डराने के साथ एक विशिष्ट लूटपाट का कार्य है। इसलिए इसराइल की कार्रवाइयां समुद्री डकैती का गठन करती हैं, जो उसकी नौसेना को कानूनी दायित्व और अंतर्राष्ट्रीय निंदा के लिए उजागर करती हैं। ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के तहत इसराइल की कार्रवाइयां आतंकवाद के रूप में। मैरीलैंड विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस जीटीडी आतंकवाद को गैर राज्य या राज्य अभिनेता द्वारा अवैध बल और हिंसा का धमकी या वास्तविक उपयोग, भय, जबरदस्ती या धमकी के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए के रूप में परिभाषित करता है। इसराइल का मदलीन पर चढ़ाई इस परिभाषा के साथ भयावह रूप से मेल खाता है। एक राज्य अभिनेता के रूप में इसराइल ने अवैध बल का उपयोग किया अंतर्राष्ट्रीय जल में यूनाइटेड किंगडम के झंडे तले जहाज पर चढ़ना बिना कानूनी प्राधिकार के एक राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फ्रीडम फ्लोटिला की गाजा नाकाबंदी को चुनौती देने को दबाना। कार्यकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए एक चिड़चिड़ाने वाले पदार्थ का उपयोग और संचार में व्यवधान, निहत्थे नागरिकों में भय पैदा करने और अनुपालन को मजबूर करने के लिए डिजाइन किए गए हिंसक कार्य थे। जीटीडी मानदंड डराने की मंशा पर जोर देते हैं और इसराइल का ग्रेटा थनबर्ग और रीमा हसन जैसे उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों को निशाना बनाना भविष्य के मानवीय मिशनों को रोकने के लिए एक जानबूझकर रणनीति का सुझाव देता है। एक यूरोपीय संसद सदस्य और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यकर्ता को ले जा रहे जहाज पर हमला करके इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक धमकी भरा संदेश भेजा, उसकी नीतियों के खिलाफ असहमति को हिंसा का सामना करना पड़ेगा। यह राज्य प्रायोजित आतंकवादी कार्य, जो खुले समुद्र पर किया गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और 1979 के बंधक लेने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे ढांचे के तहत अभियोजन की मांग करता है। यूनाइटेड किंगडम की कानूनी जिम्मेदारी और मदलीन की रक्षा में विफलता। मदलीन के झंडा राज्य के रूप में यूनाइटेड किंगडम अनक्लोज के तहत अपनी अधिकारिता के तहत पंजीकृत जहाजों की रक्षा करने की एक अटल जिम्मेदारी वहन करता है। अनक्लोज का अनुच्छेद 94(1) यह अनिवार्य करता है कि झंडा राज्य प्रशासनिक, तकनीकी और सामाजिक मामलों में अपने झंडे तले नौकायन करने वाले जहाजों पर अपनी अधिकारिता और नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू करें। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जल में यूनाइटेड किंगडम के झंडे तले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खिलाफ अवैध कार्यों जैसे समुद्री डकैती या सशस्त्र हमले का जवाब देना शामिल है। इसराइल का मदलीन के खिलाफ हस्तक्षेप यूनाइटेड किंगडम के संप्रभु अधिकारों पर एक सीधा हमला था, क्योंकि जहाज का झंडा इसे अंतर्राष्ट्रीय जल में विशेष ब्रिटिश अधिकारिता प्रदान करता था। इस अपमान के सामने यूनाइटेड किंगडम का मौन और निष्क्रियता कर्तव्य का शर्मनाक परित्याग है। चढ़ाई की खबरों के बावजूद मदलीन या इसके यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए तत्काल ब्रिटिश कूटनीतिक या नौसैनिक हस्तक्षेप का कोई सबूत नहीं है। यह विफलता अनक्लोज का उल्लंघन करती है और झंडा राज्य प्रणाली की अखंडता को कमजोर करती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्र अपने जहाजों पर अपनी प्राधिकारिता लागू करें। यूनाइटेड किंगडम ने इसराइल को यूनाइटेड किंगडम के झंडे तले जहाज पर हमला करने की अनुमति देकर अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को धोखा दिया है और बेईमान अभिनेताओं को समुद्री कानून की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ब्रिटिश सरकार को अपनी निष्क्रियता के माध्यम से संलिप्तता के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और मदलीन के चालक दल की तत्काल रिहाई की मांग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मदलीन पर मौजूद देशों के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई। इसराइल का मदलीन पर चढ़ाई और इसके बहुराष्ट्रीय चालक दल की हिरासत स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, पराग्वे, तुर्की, स्पेन और नीदरलैंड के नागरिक इन संप्रभु देशों के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई के समान है। सशस्त्र संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी अन्य राज्य के नागरिकों के खिलाफ विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय जल में सैन्य बल का उपयोग एक युद्धकारी कार्य है। मदलीन के यात्री इजरायली नागरिक नहीं थे और उनकी इजरायली बलों द्वारा हिरासत उनके मूल देशों की संप्रभुता पर एक बाहरी हमला दर्शाती है। 1961 का वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस और अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून यह पुष्टि करते हैं कि विदेश में किसी राज्य के नागरिकों पर हमले को शत्रुतापूर्ण कार्यों के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। 8 देशों के नागरिकों को निशाना बनाकर, जिसमें संसदीय उन्मुक्ति वाली एक फ्रांसीसी सांसद शामिल है, इसराइल ने अभूतपूर्व पैमाने पर एक कूटनीतिक संकट को जन्म दिया है। यह चढ़ाई 2010 के मावी मारमारा घटना की याद दिलाती है, जहां इसराइल द्वारा तुर्की नागरिकों की हत्या ने तुर्की के साथ संबंध तोड़ दिए। इस बार यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी नागरिकों की भागीदारी दांव को बढ़ा देती है, जिसमें नीटो सहयोगी और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य शामिल हैं। इसराइल की मदलीन के खिलाफ लापरवाह आक्रामकता एक वास्तविक युद्ध की घोषणा है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति का गंभीर उल्लंघन है, जिसे इन देशों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बंधक बनाना, जिसमें एक यूरोपीय संसद सदस्य शामिल है। इसराइल द्वारा मदलीन के 12 यात्रियों की हिरासत, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग और रीमा हसन शामिल हैं, 1979 के बंधक लेने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बंधक बनाना है। अनुच्छेद 1 बंधक बनाना को कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को जब्त या हिरासत में लेता है, उसे मारने, चोट पहुंचाने या हिरासत में रखने की धमकी देता है ताकि किसी तीसरे पक्ष को कोई कार्य करने या करने से रोकने के लिए मजबूर किया जाए के रूप में परिभाषित करता है। इसराइल द्वारा कार्यकर्ताओं की जब्ती बिना किसी कानूनी आधार के और निरंतर हिरासत की धमकी के तहत फ्रीडम फ्लोटिला और उनके समर्थकों को उनकी मानवीय मिशन को छोड़ने के लिए मजबूर करने का एक स्पष्ट प्रयास है। रीमा हसन एक वर्तमान यूरोपीय संसद सदस्य की हिरासत विशेष रूप से जघन्य है। यूरोपीय सांसद यूरोपीय संघ के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति पर प्रोटोकॉल अनुच्छेद 1 के तहत उन्मुक्ति का आनंद लेते हैं, जो उन्हें उनके कर्तव्यों का पालन करते समय हिरासत से बचाता है। हसन की मदलीन मिशन में भागीदारी, जिसमें वह फिलिस्तीनी अधिकारों की वकालत कर रही थी, उनके संसदीय जनादेश के अंतर्गत आता है। इसराइल का उसे हिरासत में लेने का कार्य यूरोपीय लोकतांत्रिक संस्थानों पर एक सीधा हमला है, जो निर्वाचित अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बंधक बनाए जाने की निंदा करनी चाहिए और सभी हिरासत में लिए गए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग करनी चाहिए, विशेष रूप से हसन के मामले में। निष्कर्ष: 9 जून 2025 को इसराइल का मदलीन पर चढ़ाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक घोर उल्लंघन है, जो अनक्लोज के तहत समुद्री डकैती, जीटीडी ढांचे के तहत आतंकवाद और उन देशों के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई का गठन करता है जिनके नागरिक जहाज पर थे। 12 कार्यकर्ताओं की हिरासत, जिसमें एक यूरोपीय संसद सदस्य शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय बंधक बनाना है, एक अपराध जो त्वरित वैश्विक निंदा की मांग करता है। यूनाइटेड किंगडम की अपने झंडे वाले जहाज की रक्षा करने में विफलता उसकी कानूनी जिम्मेदारियों का शर्मनाक विश्वासघात है, जो समुद्री संप्रभुता के सिद्धांतों को कमजोर करता है। इसराइल की कार्रवाइयां केवल उत्तेजक नहीं है, वे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, मानवाधिकारों और कई देशों की संप्रभुता पर एक जानबूझकर हमला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसराइल को जवाबदेह ठहराना चाहिए, मदलीन के यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी आक्रामक कार्रवाइयां कभी दोहराई न जाएं। इससे कम कुछ भी खुले समुद्र पर अराजकता के सामने आत्मसमर्पण है।